एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ विज्ञान बल्कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को ही मतलब मौलिक रूप से बदल दिया।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं थॉमस कून की कालजयी किताब द कोपरनिकन रेवोल्यूशन के बारे में।
मैं हूँ एक्सपर्ट स्पीकर का परिचय।
और मैं हूँ होस्ट स्पीकर का परिचय।
ये किताब सिर्फ आप कह सकते हैं खगोल विज्ञान की कहानी नहीं है।
हाँ, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे बड़े वैज्ञानिक विचार जन्म लेते हैं, कैसे वे सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं
और कैसे आखिरकार वे हमारी पूरी सोच को ही बदल देते हैं।
और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि समाज में बड़े बदलाव कैसे आते हैं, चाहे वो विज्ञान में हो, तकनीक में,
या हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीकों में भी।
सही कहा, ये सिर्फ तारों और ग्रहों की कहानी नहीं, ये विचारों की एक जबरदस्त क्रांति की कहानी है।
तो चलिए इस सोच की यात्रा में थोड़ी गहराई से उतरते हैं।
हाँ, तो सबसे पहले शायद लेखक के बारे में जानना जरूरी है ना?
बिल्कुल, किसी भी विचार को समझने से पहले उसके विचारक को जानना जरूरी होता है। थॉमस कून 1922-1996 एक अमेरिकी विचारक थे और उनकी अपनी कहानी भी काफी दिलचस्प है।
हाँ, उन्होंने शुरुआत भौतिकी यानी फिजिक्स से की थी, हार्वर्ड से पीएचडी भी हासिल की,
लेकिन उनका रास्ता बदला जब वो विज्ञान का इतिहास पढ़ा रहे थे।
हाँ, और उन्हें एक सवाल ने बहुत परेशान किया। अरस्तु जैसे महान प्रतिभाशाली विचारक ऐसी बातें कैसे मान सकते थे जो आज हमें बिल्कुल मतलब बेतुकी या गलत लगती हैं।
अच्छा।
हाँ, यहीं से उनके दिमाग में बत्ती जली कि शायद वो गलत नहीं थे बल्कि एक बिल्कुल अलग सोच के दायरे में काम कर रहे थे।
सोच का दायरा,
जिसे उन्होंने बाद में पैराडाइम कहा, यानी किसी खास समय में वैज्ञानिक समुदाय का सोचने समझने का पूरा ढांचा, वो उसमें काम कर रहे थे।
और यही पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट का विचार उनकी सबसे बड़ी देन माना जाता है।
बिल्कुल, द कोपरनिकन रिवोल्यूशन 1957 उनकी पहली बड़ी किताब थी जिसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत को कोपरनिकस की क्रांति के उदाहरण के जरिए समझाया।
और उनका भौतिकी और इतिहास दोनों का ज्ञान उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति बनाता था।
हाँ, वो तकनीकी बारीकियों और बड़े सांस्कृतिक बदलावों दोनों को एक साथ जोड़कर देख पाते थे।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उस महान क्रांति के बारे में है जब इंसान ने ये मानना छोड़ा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है
और ये स्वीकार किया कि पृथ्वी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं।
लेकिन किताब का मुख्य तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना?
हाँ, लेखक का मानना है कि ये सिर्फ एक खगोलीय सिद्धांत का सुधार नहीं था बल्कि एक जबरदस्त पैराडाइम शिफ्ट था।
मतलब पूरी की पूरी विश्व दृष्टि, दुनिया को देखने के नजरिए का बदलना।
सही, सदियों से चली आ रही वो सोच जिसमें विज्ञान, दर्शन, धर्म और ब्रह्मांड में इंसान की जगह, सब कुछ एक दूसरे से कसकर जुड़ा हुआ था,
वो पूरी इमारत ढह गई।
ये सिर्फ एक तथ्य का बदलना नहीं था, ये पूरी हकीकत की समझ का बदलना था।
ये किताब हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाती है, प्राचीन यूनान से शुरू होकर कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो
से गुजरते हुए न्यूटन तक।
हाँ,
कुहन बहुत विस्तार से समझाते हैं कि पुराना टॉलमी का भूकेंद्रीय मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल, कोई मूर्खता या अंधविश्वास नहीं था।
अच्छा, तो क्या था वो?
बल्कि वो अपने समय का एक बेहद सफल और परिष्कृत विज्ञान सिद्धांत था जो लगभग 1400 सालों तक टिका रहा।
1400 साल?
हाँ, ये ग्रहों की स्थिति की सटीक भविष्यवाणियां करता था और उस समय के दर्शन और धर्म के साथ पूरी तरह मेल खाता था।
तो उसकी ताकत को समझना ही ये समझने की कुंजी है कि उसे पलटना कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था।
बिल्कुल,
तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जैसे किताब हमें ले जाती है, कहानी शुरू होती है प्राचीन यूनान के टू स्फीयर यूनिवर्स से।
हाँ, वो टू स्फीयर यूनिवर्स का विचार ये बहुत सहज और स्वाभाविक लगता था, स्थिर पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में
और बाहर एक विशाल गोला जिस पर तारे जड़े हैं और वो पूरा गोला पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है।
सूरज, चांद, तारे सब रोज पूरब से उगते और पश्चिम में डूबते दिखते हैं। हमारे रोज के अनुभव से ये बिल्कुल मेल खाता था।
हाँ, ये तो ठीक था, लेकिन असली पहेली थे ग्रह।
हाँ, वो प्लैनेट्स, यूनानी भाषा में प्लैनेट का मतलब ही घुमक्कड़ या भटकने वाला तारा होता है।
अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था।
हाँ, क्योंकि ये तारों की तरह एक नियमित रास्ते पर नहीं चलते थे। इनकी चाल में अजीब अनियमितताएं थी,
खासकर इनकी वो वक्री गति,
रेट्रोग्रेड मोशन।
अब मानते हैं कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर परफेक्ट सर्कल में घूम रहा है, तो इस अजीब हरकत को समझाना बहुत मुश्किल था।
बिल्कुल, यहीं पर क्लॉडियस टॉलेमी का जीनियस सामने आता है। लगभग दूसरी सदी ईस्वी में
टॉलेमी,
उन्होंने एक जटिल लेकिन जबरदस्त प्रभावशाली गणितीय सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि ग्रह सीधे पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते,
तो फिर
बल्कि वे पहले एक छोटे वृत्त पर घूमते हैं जिसे एपिसर्कल कहते हैं।
एपिसर्कल,
और इस एपिसर्कल का केंद्र खुद एक बड़े वृत्त पर चलता है जिसे डेफरेंट कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर है।
बाप रे, कितना जटिल।
हाँ, और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने और भी गणितीय तरकीबें जोड़ी, जैसे इक्वांट।
तो ये पूरा सिस्टम जिसे उन्होंने अपनी महान किताब अल्माजिस में दर्ज किया, अविश्वसनीय रूप से सफल था।
हाँ, बहुत सफल। ये ग्रहों की चाल की इतनी सटीक भविष्यवाणी करता था कि लगभग 1400 सालों तक यूरोपीय और इस्लामी दुनिया में खगोल विज्ञान का आधार बना रहा।
हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अपने समय का शिखर विज्ञान था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं।
बिल्कुल सही। और किताब ये भी बताती है कि टॉलेमी का मॉडल अकेला नहीं खड़ा था।
अच्छा, और क्या था इसके साथ?
ये अरस्तू की भौतिकी, एरिस्टोटेलियन फिजिक्स से गहराई से जुड़ा हुआ था। अरस्तू मानते थे कि जमीन और आसमान दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं,
जिनके नियम भी अलग अलग हैं।
हाँ, जमीन यानी चंद्रमा के नीचे का क्षेत्र अपूर्ण है, यहाँ चीजें बनती बिगड़ती हैं और प्राकृतिक गति सीधी रेखा में होती है,
जैसे पत्थर नीचे गिरता है।
सही। इसके विपरीत आसमान पूर्ण, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, और यहाँ प्राकृतिक गति केवल पूर्ण, एक समान वृत्ताकार गति ही हो सकती है।
तो इस भौतिकी के हिसाब से पृथ्वी का घूमना या चलना उसकी प्रकृति के ही खिलाफ होता, उसे तो केंद्र में स्थिर ही रहना था।
एग्जैक्टली। फिर मध्य युग में इस्लामी विद्वानों ने इस यूनानी ज्ञान को न सिर्फ सहेजा बल्कि उसमें सुधार और विकास भी किया।
और बाद में यूरोप में,
खासकर थॉमस एक्विनाइस जैसे विचारकों के जरिए इस अरस्तु टॉलेमी के ब्रह्मांड का ईसाई धर्मशास्त्र के साथ विलय हो गया।
तो एक पूरा मतलब भव्य ब्रह्मांडीय ढांचा बन गया।
हाँ, सबसे बाहर ईश्वर और स्वर्ग, फिर तारों का गोला, ग्रहों के गोले और ठीक केंद्र में स्थिर पृथ्वी।
पृथ्वी का केंद्र में होना बहुत महत्वपूर्ण था, मनुष्य का घर, ईश्वर की रचना का केंद्र बिंदु।
लेकिन साथ ही ये ब्रह्मांड का सबसे निचला, सबसे अपूर्ण हिस्सा भी था, स्वर्ग से सबसे दूर।
कई बार पृथ्वी के गर्भ में नर्क की कल्पना भी की जाती थी।
हाँ, तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मॉडल नहीं था, ये एक नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था का नक्शा भी था।
जाहिर है, इस मजबूत सर्वसमावेशी ढांचे को चुनौती देना सिर्फ खगोल विज्ञान को नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और समाज की बुनियाद को हिला देने जैसा था।
बिल्कुल। लेकिन कोई भी व्यवस्था हमेशा नहीं चलती। समय के साथ इस विशाल टॉलेमिक मॉडल में भी संकट के लक्षण दिखने लगे।
संकट? कैसा संकट?
ज्यादा सटीकता पाने के लिए इसमें लगातार और ज्यादा एपिसर्कल और दूसरी जटिलताएं जोड़नी पड़ रही थीं।
तो ये बहुत भारी भरकम और बेडोल होता जा रहा था।
हाँ, छोटी मोटी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही थीं, कैलेंडर को मिलाने में भी दिक्कतें आ रही थीं।
तो कुछ खगोलविदों को अब ये सिस्टम उतना सुंदर या सामंजस्यपूर्ण नहीं लग रहा था।
सही। और यहीं पर निकोलस कोपरनिकस का प्रवेश होता है।
कोपरनिकस 1473-1543।
कून उन्हें किसी आधुनिक क्रांतिकारी की तरह नहीं देखते, बल्कि एक परंपरावादी विद्वान के रूप में देखते हैं।
परंपरावादी?
हाँ, जो गणितीय सुंदरता, सरलता और सामंजस्य के प्रति जुनून रखते थे। उन्हें टॉलेमी के सिस्टम की बढ़ती जटिलता
और खास तौर पर वो इक्वांट नाम की गणितीय तरकीब से बहुत चिढ़ थी।
हाँ, क्योंकि ये उन्हें एक समान वृत्ताकार गति के प्राचीन यूनानी आदर्श का उल्लंघन लगती थी।
तो उनका समाधान क्रांतिकारी था, भले ही उनका इरादा परंपरा को बचाना था।
बिल्कुल। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम सूर्य को केंद्र में रखें और पृथ्वी को भी बाकी ग्रहों की तरह उसके चारों ओर घुमा दें।
ऐसा करने से ग्रहों की वो अजीब वक्री गति अपने आप बड़ी सरलता से समझ में आ जाती थी।
हाँ, ये ग्रहों का असली पीछे हटना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक दृष्टि भ्रम था,
जो तब होता है जब तेज चलने वाली पृथ्वी धीमी गति वाले बाहरी ग्रहों से आगे निकल जाती है या भीतरी ग्रहों से पीछे रह जाती है।
ये गणितीय रूप से बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत समाधान था।
लेकिन रुकिए, यहाँ किताब एक बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात बताती है।
हाँ, क्या?
कोपरनिकस का शुरुआती मॉडल जो उनकी किताब डे रेवोल्यूशनिबिज में छपा वो टॉलेमी के सिस्टम से ज्यादा सटीक नहीं था।
हाँ, ये बात तो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये सचमुच चौंकाने वाला है।
और ऐसा क्यों था?
क्योंकि कोपरनिकस में प्राचीन यूनानी विचारकों की तरह यही मानकर चल रहे थे कि ग्रह पूर्ण वृत्ताकार कक्षाओं में ही घूमते हैं।
लेकिन हकीकत में ग्रह वृत्तों में नहीं घूमते।
सही कहा। इसलिए अपने मॉडल को वास्तविक प्रेक्षणों से मिलाने के लिए कोपरनिकस को भी कई छोटे मोटे एपिसर्कल इस्तेमाल करने पड़े।
तो उनके मॉडल का शुरुआती आकर्षण उसकी सटीकता नहीं थी,
बल्कि उसकी गणितीय सुंदरता, सरलता और समरूपता थी। उसने ब्रह्मांड को ज्यादा ताकिक और सामंजस्यपूर्ण बना दिया था, कम से कम गणितीय नजरिए से।
कोपरनिकस की किताब छपने के कई दशकों बाद तक उनके विचार को या तो नजरअंदाज किया गया
या ज्यादातर खगोलविदों ने इसे सिर्फ गणना करने के लिए एक उपयोगी गणितीय चाल ही माना, ना कि ब्रह्मांड की वास्तविक तस्वीर।
तो इस नए विचार को स्थापित होने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा और कई और लोगों का योगदान लगा।
हाँ, इसमें सबसे पहले एक टाइको ब्राहे 1546-1601 का नाम आता है, डेनमार्क के खगोलशास्त्री,
जिनके पास दूरबीन के आविष्कार से पहले के सबसे सटीक प्रेक्षण थे।
बिल्कुल, उन्होंने कोपरनिकस के मॉडल को पूरी तरह नहीं अपनाया, उनका अपना एक मिलाजुला मॉडल था
जिसमें ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते थे और सूर्य स्थिर पृथ्वी के।
हाँ, लेकिन उन्होंने सालों तक जो बेशकीमती और सटीक डेटा इकट्ठा किया वो आगे चलकर अमूल्य साबित हुआ।
और उस डेटा का इस्तेमाल किया योहानेस केपलर ने
1571-1630।
केपलर,
हाँ,
एक प्रतिभाशाली जर्मन गणितज्ञ और कोपरनिकस के विचार के पक्के समर्थक।
उन्होंने टाइको ब्राहे के सटीक डेटा का, खासकर मंगल ग्रह की कक्षा के आंकड़ों का, सालों तक गहन विश्लेषण किया।
और उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की जिसने खगोल विज्ञान में 2000 साल पुरानी मान्यता तोड़ दी।
क्या थी वो खोज?
कि ग्रह वृत्तों में नहीं बल्कि अंडाकार कक्षाओं इलिप्सिस में घूमते हैं।
अंडाकार कक्षाओं में?
और सूर्य उस अंडाकार के केंद्र में नहीं
बल्कि एक फोकस पर स्थित होता है।
लेकिन सिर्फ अंडाकार कक्षाओं की खोज, क्या ये इतना बड़ा बदलाव था कि सदियों पुरानी सोच पलट जाए?
हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि केपलर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि कक्षाएं अंडाकार हैं, उन्होंने इसके गणितीय नियम भी दिए।
केपलर के गति के तीन नियम।
हाँ, इन नियमों ने पहली बार कोपरनिकन मॉडल को टॉलेमी के पुराने सिस्टम से कहीं ज्यादा सटीक बना दिया।
तो अब ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं था बल्कि प्रेक्षणों से बेहतर मेल खाने वाला मॉडल बन गया था।
इसने सदियों पुराने पूर्ण वृत्त के विचार को तोड़ दिया जो अरस्तु से लेकर कोपरनिकस तक सब मानते आए थे। ये वाकई क्रांतिकारी कदम था।
और फिर इटली में आए गैलीलियो गैलीली 1564-1642।
गैलीलियो, उन्होंने लगभग उसी समय नई नई बनी दूरबीन को आसमान की तरफ घुमाया
और जो देखा उसने पुराने अरस्तु टॉलेमी की दुनिया की नींव हिला दी।
उन्होंने बृहस्पति के चार चंद्रमा देखे, मतलब ब्रह्मांड में सब कुछ पृथ्वी का ही चक्कर नहीं लगाता।
उन्होंने शुक्र ग्रह की कलाएं देखी, फेजेस ऑफ वीनस।
हाँ, ही लैसे ही जैसे हमारे चांद की कलाएं होती हैं। इससे ये पक्का साबित हो गया कि शुक्र सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का नहीं।
और चांद पर पहाड़ और गड्ढे देखे,
मतलब आसमान पूर्ण चिकना और अपरिवर्तनीय नहीं है बल्कि पृथ्वी जैसा ही खुरदुरा और बदलने वाला है।
गैलीलियो ने इन मुशाहदात से कोपरनिकन मॉडल का जोरदार समर्थन किया
और इस बहस को प्रयोगशालाओं से निकालकर आम जनता और चर्च तक ले गया, जिसके कारण उन्हें चर्च के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा।
लेकिन अब भी एक बड़ी पहेली बाकी थी, है ना?
हाँ, बिल्कुल। कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो ने ये तो बता दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं,
लेकिन ये कोई नहीं बता पाया था कि वे क्यों घूमते हैं, वे सूर्य से बंधे क्यों रहते हैं।
पुरानी अरस्तु की भौतिकी तो गलत साबित हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह लेने वाली कोई नई सुसंगत भौतिकी अभी तक नहीं थी।
यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा किया इंग्लैंड के सर आइजैक न्यूटन।
न्यूटन अपनी महान कृति प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में उन्होंने अपने गति के तीन नियम और सबसे बढ़कर
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया।
हाँ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस नियम ने पहली बार गणितीय रूप से समझाया कि वही बल जो सेब को पेड़ से जमीन पर गिराता है,
वही अदृश्य बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर उनकी अंडाकार कक्षाओं में बनाए रखता है।
न्यूटन ने दिखा दिया कि जमीन और आसमान में अलग अलग नियम नहीं चलते बल्कि एक ही सार्वभौमिक भौतिक नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं।
और इसके साथ ही कोपरनिकन क्रांति अपने अंजाम तक पहुंची।
परिणाम, ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर ही बदल गई। एक छोटी बंद श्रेणीबद्ध दुनिया की जगह
एक विशाल संभवता अनंत समरूप अंतरिक्ष ने ले ली, जो पूरी तरह से गणितीय नियमों से संचालित होता था।
इंसान जो कल तक खुद को ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा समझता था, अब एक साधारण से ग्रह का निवासी बन गया,
जो विशाल अंतरिक्ष में सूर्य की परिक्रमा कर रहा था।
ये सिर्फ खगोल विज्ञान का बदलाव नहीं था, ये सोच का, दर्शन का, धर्म का और इंसान की अपनी पहचान का एक गहरा बदलाव था।
तो न्यूटन के साथ ये क्रांति पूरी हुई। अब जरा रुक कर सोचते हैं कि इस पूरी लंबी और रोमांचक कहानी से कून हमें विज्ञान के काम करने के तरीके और ज्ञान के विकास के बारे में क्या बड़े सबक सिखाना चाहते हैं।
बिल्कुल, पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि वैज्ञानिक सिद्धांत कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा एक बड़े ढांचे का हिस्सा होते हैं,
जिसे कून पैराडाइम कहते हैं।
हाँ, यानी किसी विशेष युग में किसी वैज्ञानिक समुदाय की बुनियादी मान्यताएं, सिद्धांत, तरीके और मूल्य, सबका मिलाजुला ताना बाना।
जैसे टॉलमी का सिस्टम सिर्फ खगोल विज्ञान का मॉडल नहीं था, उसमें अरुस्तु की भौतिकी, ईसाई धर्मशास्त्र, नैतिकता, सब कुछ गुथा हुआ था।
सही, ये एक पूरी विश्व दृष्टि थी। जब आप उसके एक हिस्से को चुनौती देते हैं, तो आप अनजाने में ही उस पूरे जुड़े हुए ढांचे पर सवाल उठा रहे होते हैं।
सोचिए कैसे हमारे अपने समाज में कुछ गहरे विश्वास हमें कितने स्वाभाविक और सच लगते हैं, और उन्हें चुनौती देना कितना मुश्किल या असहज हो सकता है।
हाँ, और इसी से जुड़ा दूसरा सबक है, स्थापित पैराडाइम की जबरदस्त शक्ति और बदलाव के प्रति उसका प्रतिरोध।
जो विचार सदियों से काम कर रहे हों, वे बहुत मजबूत होते हैं।
हाँ, टॉलेमी का सिस्टम 1400 साल चला। जब उसमें समस्याएं आने लगीं, तो वैज्ञानिकों ने उसे तुरंत फेंका नहीं,
बल्कि उसमें सुधार करने, पैबंद लगाने और जटिलताएं जोड़ने की कोशिश की, ताकि पैराडाइम बचा रहे।
यह विरोध सिर्फ जिद या मूर्खता नहीं होती, इसके पीछे अक्सर ठोस कारण होते हैं। पुराना तरीका काम कर रहा था, उसमें लोगों का निवेश था,
और नया तरीका शुरुआत में अधूरा, असिद्ध और खतरनाक लग सकता है।
हम ये आज भी देख सकते हैं, जब कोई नई तकनीक आती है या काम करने का कोई नया तरीका सुझाया जाता है, तो शुरुआत में उसका प्रतिरोध होता है।
तीसरा दिलचस्प पहलू है विज्ञान में सुंदरता, सरलता और सामंजस्य का महत्व।
हाँ, हमने देखा कि कोपरनिकस मुख्य रूप से नए डेटा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि मौजूदा टॉलेमिक सिस्टम की बढ़ती हुई बिडौल जटिलता से परेशान थे।
वो एक ज्यादा सुंदर, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण गणितीय समाधान ढूंढ रहे थे।
ये हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक चुनाव हमेशा सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं होते, कभी कभी सुंदरता, समरूपता जैसे सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी अच्छी डिजाइन वाली चीज या किसी सरल लेकिन प्रभावी समाधान की सराहना करते हैं।
चौथा अहम बिंदु जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो ये है कि वैज्ञानिक प्रगति हमेशा एक सीधी सपाट रेखा में नहीं होती,
ये उबड़ खाबड़ रास्ता है।
हाँ, नया विचार जैसे कोपरनिकस का मॉडल शुरुआत में कुछ मामलों में पुराने से बदतर भी हो सकता है।
जैसे हमने देखा, वो कम सटीक था और उसने नई मुश्किल समस्याएं खड़ी कर दी।
जैसे अगर पृथ्वी घूम रही है तो हमें तेज हवा क्यों महसूस नहीं होती, तारे इतने दूर क्यों हैं कि उनका पैरेलैक्स नहीं दिखता।
इन नई समस्याओं को हल करने में केपलर, गैलीलियो और न्यूटन जैसे कई लोगों का योगदान और लगभग 150 का समय लगा।
यह हमें सिखाता है कि नई चीजों को विकसित होने में समय लगता है, जैसे कोई नई स्किल सीखते समय हम शुरुआत में अक्सर कम कुशल होते हैं।
और पांचवा सबक, जो शायद सबसे गहरा है, वैज्ञानिक क्रांतियां सिर्फ पुराने जवाबों को नहीं बदलती,
वे पूछे जाने वाले सवालों को ही बदल देती हैं।
टॉलेमी के पैराडाइम में मूल सवाल था ग्रहों की गति को समझाने के लिए वृत्तों का सही संयोजन कैसे करें।
न्यूटन के बाद पैराडाइम बदल गया और सवाल बन गया, कौन सी सार्वभौमिक शक्तियां और भौतिक नियम सभी पिंडों की गति को नियंत्रित करते हैं।
खेल के नियम ही बदल गए।
हाँ, कोहेन इसे पैराडाइम की असंगतता यानी इनकमेंशुरेबिलिटी कहते हैं, यानी नया पैराडाइम दुनिया को इतने अलग नजरिए से देखता है कि पुराने और नए की सीधे सीधे तुलना करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं और अलग सवाल पूछते हैं।
ये सब सुनने में भले ही थोड़ा अकादमिक लगे, लेकिन इन विचारों के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई मायने हैं।
हाँ, जैसे बदलाव को समझना, चाहे वो किसी कंपनी में हो, समाज में या हमारे अपने जीवन में।
राइट।
कुन का मॉडल हमें समझाता है कि स्थापित व्यवस्थाएं, पुरानी कंपनियां, संस्थाएं या हमारी अपनी आदतें नए विघटनकारी विचारों का विरोध क्यों करती हैं।
अक्सर इसलिए नहीं कि लोग बदलाव से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि पुराना तरीका काम कर रहा था, उसमें उनकी पहचान जुड़ी थी।
और नया तरीका शुरुआत में अधूरा, जोखिम भरा लगता है और पुरानी मापदंडों या विश्वासों में फिट नहीं बैठता।
असली बदलाव के लिए अक्सर सिर्फ एक चीज नहीं, पूरे सोच के ढांचे यानी पैराडाइम को बदलने की जरूरत होती है।
बिल्कुल, और यह हमें नए क्रांतिकारी विचारों का मूल्यांकन करने का एक नया तरीका भी सिखाता है।
हमें उनके प्रति थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।
हाँ।
उनकी शुरुआती कमियों से परे देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या उनमें कोई वैचारिक सुंदरता है? क्या वे समस्याओं को देखने का एक नया, ज्यादा सरल या ज्यादा शक्तिशाली तरीका पेश करते हैं?
क्या वे नए महत्वपूर्ण सवाल पूछने की क्षमता रखते हैं, जैसा कोपरनिकस के मॉडल ने किया?
किसी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए कि वो अभी पूरी तरह विकसित नहीं है या हमारे मौजूदा तरीकों से एकदम अलग है।
और अंत में इससे हमें बौद्धिक विनम्रता का भी एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है।
हाँ, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ये समझना कि हमारे जो स्पष्ट और स्वयं सिद्ध सत्य हैं, वे अक्सर हमारे अपने समय और समाज के पैराडाइम की देन होते हैं।
जो विचार हमें अतीत के लगते हैं कि कितने गलत या मूर्खतापूर्ण
थे, वे उस समय के संदर्भ में पूरी तरह तर्कसंगत और साक्ष्यों पर आधारित हो सकते थे।
यह हमें अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
हाँ, तो इस पूरी गहरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रगति कोई सीधी आसान सड़क नहीं है। ये अक्सर उथल पुथल भरी क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है, जिसमें पुराने ढांचे टूटते हैं और नए बनते हैं, और इसमें समय लगता है।
और ये भी कि कैसे कभी कभी सुंदरता और सामंजस्य जैसे विचार सिर्फ डेटा या प्रयोग नहीं, विज्ञान को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि पुराने स्थापित विचार और विश्व दृष्टियां कितनी मजबूत और टिकाऊ हो सकती हैं,
और उन्हें बदलने के लिए कितना संघर्ष और साहस चाहिए होता है।
ये भी कि कैसे विज्ञान में हुआ एक बदलाव सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने दर्शन, धर्म और सबसे बढ़कर हमारी अपनी पहचान की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के हमारे कौन से स्पष्ट, तार्किक और स्वाभाविक लगने वाले विश्वास या मान्यताएं
किसी ऐसे पैराडाइम का हिस्सा हैं जो शायद भविष्य में अपनी क्रांति का इंतजार कर रहा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।